Kamu juga ulang. जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वन चारी यमुना तीरा जय राध माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वन यमुना तीरा वन यमुना जय राध माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल Hare Rama हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम
राम लक्ष्मण हनुमान की पंच तत्व गौर निताय की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की पतिता पावन श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेम आनंदे। तो आज हम डिस्कशन करेंगे, यहां पर चर्चा कर रहे हैं तीसरे स्कंध के पहले अध्याय का 11वां और 12वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गृत्रा श्रीमद् भागवतम की। तो ये श्लोक है, 12वां श्लोक हम पढ़ेंगे और 11 और 12 की चर्चा करेंगे। तो आप पीछे दोहरा सकते हैं, पहले 11वां।
ग्यारहवां श्लोक है, अजात शत्रु प्रीतक्षदायाम तितिक्ष्वा दोषायिनं तो वाग सह अनुयत्र वृकदोर अहि श्वासन रुषायत्वम अलम विभेषी। विदुर ने कहा, तुम्हें चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाग लौटा दो, क्योंकि उसका कोई शत्रु नहीं है और वह तुम्हारे अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन करता रहा है। वह अपने छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षारत है, जिनमें से प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीम सर्प की तरह उच्छास ले रहा है। तुम निश्चय ही उससे भयभीत हो। बारहवां श्लोक पढ़ेंगे। पार्थनस्तु देव भगवान मुकुंदो गृहीतवान क्षितिदेव देव आस्ते स्वयपुन्नम यदु देव देव विनिर्जति अशेष निर्देव देव पार्थन्तु देव भगवान मुकुंदो गृहीतवान क्षितिदेव देव अस्ते सुपुर्यां यदु देव देवो विनिर्जिते अशेष निर्देव देव पार्थन्तु देव भगवान मुकुंदो गृहीतवान क्षितिदेव देव आस्ते स्वयपुर्यां यदु देव देव विनिर्जिति अशेष निर्देव देव। पार्थस्तु देव भगवान मुकुंदो गृहीतवान स क्षितिदेव देव अस्ते सपुर्यां यदु देव देवो विनर्जिते शेष निर्देव देव। पार्थनस्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान स क्षितिदेव देव आस्ते सुपर्यां यदु देव देवो विनिर्जिता शेष निर्देव देवो पार्थनस्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान स क्षितिदेव देवो आस्ते सुपुर्यान यदु देव देवो विनिर्जिता शेष निर्देव देवो पार्थनस्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान स क्षितिदेव देवो आस्ते सुपुर्यां यदु देव देवो विनिर्जिता शेष निर्देव देव पार्थनस्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान स क्षितिदेव देवो आस्ते सपर्यां यदु देव देवो विनिर्जिता शेष निर्देव देवो। इसका वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, इसका अर्थ बदलो। पार्थनस्तु देव भगवान मुकुंदो गृहीतवान स क्षितिदेव देव अस्ते सुपर्यां यदु देव देवो
विनिर्जिता शेष निर्देव देव।
पार्थन, प्रथा के पुत्र को तू लेकिन देव प्रभु भगवान भगवान मुकुंद मुक्तिदाता श्री कृष्ण ने गृहितवान ग्रहण कर लिया है। स सहित क्षिति देव देव ब्राह्मण तथा देवता आस्ते उपस्थित हैं स्वपुण्यम अपने परिवार सहित। यदु देव देव यदु वंश के राजकुल द्वारा पूजित विनिर्जित जीते हुए अशेष असीम नृदेव राजा देव स्वामी। भगवान कृष्ण ने प्रथा के पुत्र को अपना परिजन मान लिया है और संसार के सारे राजा श्री कृष्ण के साथ हैं। वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ जिन्होंने असंख्य शस्त्रों को जीत लिया है उपस्थित हैं और वे उन सबके स्वामी हैं। तात्पर्य बाय डिवाइन श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की। विदुर ने धृतराष्ट्र को प्रथा के पुत्र पांडवों के साथ राजनीतिक संधि करने की बहुत अच्छी सलाह दी। पहली बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि भगवान कृष्ण उनके फुफेरे भाई के रूप में उनके निकट संबंधी हैं। क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतः वे समस्त ब्रह्मांडों तथा देवताओं द्वारा पूज्य हैं, जो ब्राह्मण के कार्यकल्पों का नियंत्रण करते हैं। इसके साथ ही भगवान कृष्ण तथा उनके यदुवंशी पारिवारिक जन संसार के समस्त राजाओं के विजेता हैं। क्षत्रियगण विभिन्न राज्यों के राजाओं से युद्ध करते थे और उन्हें हराकर उनकी सुंदर राजकुमारियों का अपहरण कर लेते थे। ये प्रणाली प्रशंसनीय थी क्योंकि क्षत्रियों तथा राजकुमारियों का विवाह विजेता क्षत्रिय की वीरता के आधार पर होता था। यदुवंश के समस्त राजकुमारों ने वीरता के बल पर इस तरह की अन्य राजाओं की कन्याओं से विवाह किया था। इस तरह वे संसार के समस्त राजाओं के विजेता थे। विदुर अपने भाई के मन में ये बात बैठा देना चाहते थे कि पांडवों से युद्ध करना उनके खतरे से अनेक खतरों से पूर्ण है, क्योंकि उनकी सहायता श्री कृष्ण कर रहे थे जिन्होंने अपने बालकाल में ही कंस तथा जरासंध जैसे असुरों को और ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवताओं को जीत लिया था। अतएव विष्णु विश्व की संपूर्ण शांति पांडवों के साथ थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति शब्दकान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशेष तारिणे। हरे कृष्ण। तो आज का जो ये श्लोक है 11वां और 12वां, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, प्रयास करेंगे बताने का जितना समझ पाए। तो इसमें जो संवाद चल रहा है वो ये है
कि धृतराष्ट्र जो है महाभारत में वो राजा बनना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नेत्रहीन थे और नेत्रहीन होने के कारण उनको राज सिंहासन नहीं दिया गया और उनके छोटे भ्राता जिनका नाम था महाराज पांडु उनको वो सिंहासन मिला। लेकिन महाराज पांडु बचपन से ही जो थे वो जॉन्डिस पीलिया के मरीज थे, उनको पीलिया की बीमारी थी और वो श्रापित भी थे कि अब कभी उनका विवाह हो और अगर वो अपनी पत्नी के साथ संग करना चाहेंगे तो उस फिर उस इच्छा के अनुरूप ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उनके जीवन में काफ़ी सारी परेशानियां थी। उसके बाद भी उनके दो विवाह हुए, एक जो है माद्री के साथ में और एक कुंती महारानी के साथ में जिनका पहले नाम प्रथा था। इसी के कारण भगवान भगवद गीता में बार बार कृष्ण को पार्थ कहते हैं क्योंकि वो प्रथा के पुत्र हैं। तो जो ये पांडु महाराज थे एक बार जंगल की तरफ जाते हैं और वहाँ पर माद्री और कुंती से अनुग्रह करते हैं कि मुझे कम से कम कोई पुत्र चाहिए क्योंकि आगे राज सिंहासन संभालने के लिए कोई नहीं है। धृतराष्ट्र जो कि अंदर से भी अंधे हैं और बाहर से भी अंधे हैं, अंदर से अंधे इसलिए क्योंकि वो हमेशा दुर्व्यवहार करने की इच्छा रखते हैं, अपने पुत्रों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। आप देखें भगवद गीता के अंदर भी जो प्रथम अध्याय शुरू होता है तो प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक क्या है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युधिष्ठिर मामकः पांडव पुत्र किम उकरवतः संजय, मेरे और पांडव के पुत्रों ने। तब आप ये देखें कि वो अभी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पहले श्लोक के अंदर ही कि मेरे और पांडव के पुत्र, मतलब उनके अंदर ये है कि पांडव के पुत्र जो है वो मेरे पुत्र नहीं है। जबकि क्या है, कम्युनिटी लविंग कम्युनिटी होनी चाहिए। अगर पिता सही तरीके से कार्यरत नहीं है या बीमार है तो चाचा ताऊ उनकी जिम्मेदारी बनती है कि घर में सारी संतानों को अपनी संतान माने। लेकिन उस समय में भी उस धृतराष्ट्र के मन में क्या है वो पहले श्लोक से पता चल जाता है गीता के, कि वो बोल रहा है मेरे पुत्रों ने और पांडव के पुत्रों ने क्या किया, डिफ्रेंशिएट है उसके बारे में। तो उसी के कारण ये सारा कला ये महाभारत का युद्ध हो रहा है क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है अंदर से भी और बाहर से भी। तो व्यक्ति हो सकता है कि बाहर से नेत्रहीन हो जैसे सूरदास जी थे, लेकिन अंदर से नेत्रहीन नहीं होना चाहिए, है ना। आज के समाज में सब लोग कैसे हैं, बाहर से तो नेत्र हैं लेकिन अंदर से नेत्रहीन है क्योंकि वो भगवान से जुड़े हुए नहीं है। जो व्यक्ति भगवान से नहीं जुड़ा हुआ वो नेत्रहीन है। आप देखें नेतृत्व ये शब्द है ये उसके लिए आता है जो व्यक्ति लीडर होता है। तो आज के जो लीडर्स हैं जो नेता कहलाते हैं वो अंधे हैं। नेता जो है वो नेतृत्व करने लायक नहीं है, क्यों, क्योंकि वो भगवान से जुड़े हुए नहीं है। तो पुराने जमाने में जो होते थे वो राज ऋषि होते थे, राजा भी थे और ऋषि भी थे, क्यों, क्योंकि वो राज सिंहासन में 50 साल की आयु तक ही सिर्फ सेवा करते थे और उसके बाद अपनी राजगद्दी अपने पुत्रों को देकर और वन की तरफ चले जाते थे। तो लेकिन आज के समय में क्या है, सरकार बोलती है 58 में प्रभुपाद बता रहे रिटायर हो जाओ, लेकिन उसके बाद भी क्या है रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं है। 58 के बाद में भी 60 के बाद में भी सोचते हैं अब कुछ और किया जाए, कुछ नया किया जाए। तो ऐसी जो इच्छा है वो कैसी है, नेत्रहीन है, क्योंकि वो अंदर से भगवान से जुड़े हुए नहीं है। तो जब वो जंगल में जाते हैं तो कुंती के द्वारा तीन पुत्रों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि कुंती महारानी को जो है वो लिया हुआ था वरदान कि वो जब भी किसी देवता को पुकारेंगी, दुर्वासा ऋषि की उन्होंने सेवा करी आप कथा जानते हैं, जिसके कारण उनको ये वर प्राप्त हुआ कि जिस भी भगवान जिस भी देवता को आप पुकारेंगे वो देवता आकर आपको क्या करेंगे, एक पुत्र का प्रदान करेंगे। तो उन्होंने फिर इसी प्रकार से जो है पहले पुत्र को जो उनका एक तो अभाष से पहले एक पुत्र हुआ था जिनका नाम है कर्ण, क्योंकि वो जो है उनके कानों से प्रकट होते हैं रूपात बता रहे हैं इसीलिए उनका नाम है कर्ण, और वो आए थे सूर्य देवता की तरफ से। उन्होंने चेक करने के लिए सूर्य देवता को पुकारा और सूर्य देवता आए और उन्होंने क्या वरदान दिया कि लो तुम्हें मैं एक पुत्र देता हूँ। उन्होंने कहा अरे मैं तो अविवाहित स्त्री हूँ मुझे पुत्र नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं आप ये पुत्र लेने से आप विवाहित और अविवाहित में कोई आप कुमारी कन्या रहेंगी क्योंकि ये जो पुत्र है वो आपके कर्ण कानों से पैदा होगा इसलिए इसका नाम कर्ण होगा और उसका नाम कर्ण रखा गया। और फिर उन्होंने उसको प्रवाह कर दिया जल में। और फिर जब ये पांडु के साथ में जाते हैं पांडु महाराज के साथ जंगल में तो वहां पर भी कुंती महारानी धर्मराज को पुकारती हैं और फिर उनसे युधिष्ठिर प्रकट होते हैं और इसी प्रकार से पवन देवता को पुकारती हैं तो भीम प्रकट होते हैं और इसी प्रकार अर्जुन प्रकट होते हैं। तो फिर माद्री कहती हैं आपके पास तो ये वरदान है कि आप पुत्र उत्पत्ति कर सकते हो देवता को पुकार कर, लेकिन मैं तो जो है पूरा जीवन बिना किसी बच्चे के अपना शरीर त्याग दूंगी क्योंकि मैं तो कभी पांडु महाराज थे और मेरे पास तो वरदान भी नहीं है।
तो उन्होंने कहा ठीक है आप चिंता मत करिए क्योंकि तो आप मेरी बहन है, क्योंकि एक पति की अगर दो पत्नियां हैं तो वो दोनों बहनें हैं। तो उन्होंने कहा आप मेरी बहन हैं तो मैं आपकी मदद करूंगी और आपको दो पुत्र देते हूँ। तो उनको नकुल और सहदेव उनके द्वारा उत्पत्ति होती है। तो ये पांच पुत्र थे और एक बार पांडु महाराज के मन में ये जिज्ञासा उठी कि मैं अपनी पत्नी का संग करूं। सिर्फ इतनी भावना उत्पन्न होने से ही क्या हुआ, उनको मृत्यु रूपी पाश ने पकड़ लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो माद्री जो है उन्होंने बोला कि मेरे आकर्षण के कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि कुंती तो सदा भगवान के चिंतन में रहती थी, तो मैं भी अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी, उनके साथ चिता पर जल जाऊंगी। तो जब पांडु और उनकी पत्नी माद्री ये दोनों जब भस्म हो जाते हैं चिता पर, तो उसके बाद कुंती महारानी अपने पांच पुत्रों के साथ वापिस आती हैं। और जब वो वापिस आ रही हैं तो फिर उनके साथ में ट्रीटमेंट तो अच्छा हो नहीं रहा, क्योंकि धृतराष्ट्र क्या सोच रहे हैं मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, उनके मन में हमेशा ये डिफ्रेंसिएशन है। तो इनके घर में एक और भाई है धृतराष्ट्र, पांडु और उनके साथ में एक दासी पुत्र, उनका नाम है विदुर, है ना। विदुर यहाँ पर वही संवाद चल रहा है कि विदुर ने धृतराष्ट्र को प्रथा के पुत्र पांडवों के साथ राजनीतिक संधि करने की बहुत अच्छी सलाह दी। विदुर ने बोला कि देखो आप जो है पांडु के पुत्र जो है पांच और आपके पुत्र है कौरव, हम बोलते हैं कौरव और पांडव। तो वो पांडु के पुत्र और कौरव जो है अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे कौरव हैं, क्योंकि कुरु वंश में उत्पत्त जो भी हैं वो सारे कौरव हैं। लेकिन ये भेद करते हैं बार बार, हम भी बोलते हैं कौरव और पांडव, क्योंकि धृतराष्ट्र की मेंटेलिटी ऐसी थी, उसकी मानसिकता ऐसी थी कि मेरे और पांडु के पुत्र, उसने हमेशा डिवाइड एंड रूल, ये मेरे नहीं है ये मेरे हैं, ऐसा भाव उसने हमेशा रखा, जिसके कारण जो है इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ। तो विदुर जो है उनको विद्वान बताया गया है कि वो दास के पुत्र तो थे लेकिन विद्वान थे, क्योंकि उनके पास क्या था, भगवान की भक्ति थी। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान की शरणागति रखेगा वो देखा जाए तो असलियत में वही असली विद्वान है, है ना। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आप नॉलेज ले लें और भक्ति ना करें, लेकिन भक्ति रूपी जो ज्ञान है ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होता है, जो कि अपने आप प्रकट होता है किस प्रकार से, गुरु की सेवा करने से, श्रील प्रभुपाद की सेवा करने से। श्रील प्रभुपाद की अगर हम सेवा करेंगे तो क्या होगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, आपको पता नहीं चलेगा, एक बहुत बड़ी सी कढ़ाई है उसमें हलवा बनाते बनाते करछी चलाते चलाते जैसे हमारे पूरी चलाते हैं, और हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा एक दिन, और आप बोलेंगे क्या। दिव्य ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आपको सारे श्लोक लर्न हो जाएंगे, दिव्य ज्ञान का मतलब ये कि आप तत्व ज्ञान को समझ जाएंगे कि मैं कौन हूँ, जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, मैं दास हूँ भगवान का। ऑफेंसेस करने की जो इच्छा है आपके अंदर, वैष्णव अपराध करने की जो इच्छा, ये सारी समाप्त हो जाएगी। कैसे, सिर्फ विद्वान कैसे बन जाएंगे आप, अपने गुरु के बताए गए आदेशों का पालन करें। लेकिन हमारे साथ क्या दिक्कत है, हम उसमें इफ एंड बट लगाते हैं, इसी का कारण क्या है, हम कभी भी हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट नहीं होता है। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में थे तो प्रभुपाद ने अपने एक भक्त को बुलाया, उनका नाम था हैग्रीव प्रभु। तो हैग्रीव प्रभु को बोले कि मैं ना चाहता हूँ, अभी मैंने सिर्फ दो भागवतम ग्रंथों का ही ट्रांसलेशन किया है, तात्पर्य लिखा है, तो मैं चाहता हूँ कि भागवतम कम से कम मेरे जीवन काल में जब तक मैं यहाँ रहूँ तब मैं भागवतम के संपूर्ण 12 के 12 स्कंद जो है ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, तो तुम मेरे साथ में सेवा करोगे। तो उनको समझ में नहीं आया 12 स्कंद ये और वो, तो नए नए भक्त बने थे, तो वो प्रभुपाद से बोले जी प्रभुपाद। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे उठा के 3-4 पन्ने दिए, बोले ये लो और इनको ट्रांसलेट इंग्लिश में करके लाओ, क्योंकि वो प्रोफेसर थे इंग्लिश यूनिवर्सिटी में। तो उनको बोले कि ये ले जाओ इनको ट्रांसलेट करके लाओ, तो वो बोले ठीक है, वो ट्रांसलेट करके ले आए। तो प्रभुपाद ने चेक किया, प्रूफ रीडिंग करी और बोले वाह वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया है आपने। तो बोले ठीक है प्रभुपाद, और कोई सेवा हो तो बताना। तो वो ले जाते अंदर कमरे में, तो जब कमरे में जाते हैं वहाँ एक बक्सा रखा होता है बहुत बड़ा, और उसमें बहुत सारे विभिन्न विभिन्न जो है आचार्यों के शास्त्र होते हैं, तो खोलते हैं और दिखाते हैं, इतने सारे ग्रंथ रखे हुए हैं प्रभुपाद के पास में ट्रंक में, जो प्रभुपाद इंडिया से बॉस्टन ले गए थे। तो उसमें इतने सारे शास्त्र देख के हैब्री हैरान रहते हैं, अरे प्रभुपाद ये क्या है, कह रहे इन सबका ट्रांसलेशन तुमको ही करना है। तो कह रहे प्रभुपाद इसमें तो जन्म लग जाएगा, बोले जन्म नहीं कई जन्म लग जाएंगे, मतलब गुरु की सेवा निरंतर कई जन्मों तक के लिए प्रभुपाद ने उनको हैग्रीव प्रभु को सेवा में लगा के रखा। तो सोचिए कि इस प्रकार से हमको है ना दृढ़ निश्चय होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, अरे महाराज हम कैसे करेंगे, अरे गुरु महाराज हम कैसे करेंगे, ना प्रभुपाद हम कैसे करेंगे, ऐसा नहीं। और उन्होंने दृढ़ निश्चय होगा कि ठीक है अब मिल गया 30 साल 40 साल, हो सकता है 2 साल 1 साल 1 घंटा, लेकिन बस जो बोला है वो हम करते रहेंगे, चाहे हमारा शरीर ही समाप्त हो जाए। तब दिव्य ज्ञान प्रकट होता है और है कि प्रभु इतने बड़े इतने सीनियर डिवोटी बने और इतना उन्होंने श्रद्धापूर्वक समर्पण किया इस इस्कॉन मूवमेंट के अंदर। इस प्रकार से गुरु की शरणागति होना चाहिए। प्रभुपाद बताते हैं कि जो विद्वान व्यक्ति होता है और राजा जो होता है उसमें बहुत फर्क होता है। धृतराष्ट्र राजा है और विदुर विद्वान है, लेकिन जो राजा होता है ना उसके लिए बताया गया है कि स्वदेश पूज्यते राजा और विद्वान सर्वतः पूज्यते। जो राजा होता है वो सिर्फ कहाँ पूजा जाता है, राज्य के अंदर, लेकिन जो विद्वान होता है वो सब जगह पूजा जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जो है श्री राधा गोविंद भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, पंच तत्व गौर निताय की, पद पावन श्रील प्रभुपाद की जय। तो जो है विद्वान प्रभुपाद जी जैसे विद्वान व्यक्ति जो है वो कहाँ पूजे जाते हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद पूरे जगत में है ना। और जो राजा होते हैं, प्राइम मिनिस्टर है मान लीजिए अभी इस समय मनमोहन सिंह, और उनको अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं पूजेगा, हो सकता है कि हाँ क्योंकि इंडिया आजकल फेमस हो गया है कंट्री पूरे वर्ल्ड में तो फिर भी कोई जानता हो, लेकिन हाँ अगर कोई ऑस्ट्रेलिया का राजा होगा और वो इंडिया में आएगा तो हम में से कोई उसे जानता भी नहीं होगा कि कौन है ना। तो राजा जो होता है स्वदेश पूज्यते राजा, विद्वान सर्वथा पूज्यते, जो विद्वान व्यक्ति वो सब जगह पूजा जाता है। और विद्वान कौन सा, जो भक्ति रूपी ज्ञान से विद्वान बनता है ना। तो चाणक्य पंडित बता रहे हैं, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर पार्पट में लिखा है कि कौन है असली विद्वान व्यक्ति, कैसे हम समझेंगे कि कौन पंडित है, असली विद्वान है, असली पंडित है, असली भक्त है। तो बताते हैं मातृवता पर दुरेशु, जो दूसरी स्त्री को माता के समान मानता है, अपनी स्त्री के अलावा हर एक स्त्री को माता के समान मानता है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। तो मातृवता पर दुरेशु परा द्रव्येशु लोस्तत्व, मतलब दूसरे के जो द्रव्य है जो धन है दूसरे का उसको कूड़े के समान माने, लेकिन हम क्या है दूसरे के धन को पाना चाहते हैं। अरे उसके पास इतना, मेरे पास इतना कम, मेरा बैंक बैलेंस उसके बराबर होना चाहिए है ना। तो परा द्रव्येषु लोस्त्रवत, दूसरे के धन को कूड़े के समान जो व्यक्ति मानेगा, और आत्मवत सर्वभूतेषु, इस भूतल पर जब तक वो रहेगा आत्मवत, हमेशा अपना आत्मचिंतन करेगा कि मैं कौन हूँ, जीवेरे स्वरूप है कि कृष्ण दास, मैं भगवान का दास हूँ। आत्मवत अपनी आत्मा के ज्ञान को, आत्म तत्व को समझकर, भगवान के तत्व को समझकर उनकी सेवा में लगा रहेगा, गुरु तत्व को समझकर उनकी सेवा में लगा रहेगा। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यन्ति सा पंडिता, ये कौन है, असली पंडित है, ज्ञानी है, विद्वान है, शास्त्री है। खाली ये नहीं कि हम डिग्री लगा लें शास्त्री की, लेकिन असली शास्त्री वो है जो इस प्रकार की रचना रखता है। देखें तो द्रव्येषु जैसी चीज है, आत्मवत जैसी चीज है कि हम अपने जीवन में अपना नहीं रहे, कभी हम आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इस भौतिक शरीर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि इस समय धृतराष्ट्र भी भौतिक शरीर पे ध्यान दे रहे हैं, अंधे हैं लेकिन फिर भी क्या चाहते हैं, अभी पांडु महाराज तो रहे नहीं, मैं बनना चाहिए राजा। और अगर पांडु महाराज के पुत्र वापिस आ गए तो वो राजा बन जाएंगे, कहेंगे हमारे पिता राजा थे तो हमें राजगद्दी मिलनी चाहिए। तो अगर मैं इन लोगों को इस देश निकाला दे दूं है ना, और फिर मेरे पुत्र जो हैं वो सिंहासन के राजा बन जाएंगे, और दुर्योधन और आदि उनके जो पुत्र हैं सौ वो राजा बनेंगे है ना। दुर्योधन को राजा बनाने की चाह में उसने क्या किया, बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। कृष्ण भगवान जब जाते हैं और कहते हैं कि सिर्फ 5 गांव दे दो और ये पांचों के पांचों जो आराम से अपनी माँ की और भगवान की सेवा करके रह लेंगे, तो दुर्योधन कहते हैं कि 5 गांव की बात करते हैं, मैं तो सुई की नोक रखने के बराबर भी जगह देने को तैयार नहीं हूँ, अभी तो युद्ध होगा और उस युद्ध के बाद निर्णय होगा कि कौन कितना कौशलपूर्ण है, किसमें कितनी शक्ति है। ये अहंकारी भाषा है ना, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, हर एक व्यक्ति को लगता है कि तीर चलाने वाला मैं हूँ, रथ चलाने वाला मैं हूँ, दुर्योधन को लग रहा है, ऐसी हमको भी लगता है। हर एक सेवा को पूर्ण करने पर जब हमको कोई ग्लोरिफिकेशन मिलता है, तारीफ मिलती है, तो हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न होता है, ओ इसको करने वाला मैं हूं, मेरे कारण, अगर मैं ना रहूं तो ये सेवा ना रहेगी। ऐसा नहीं है, सृष्टि चलाने वाले गोविंद हैं, मुकुंद हैं, इसको सृष्टि को चलाने वाले हम नहीं हैं। अगर चाहें तो हम सेवा कर सकते हैं, वो ना चाहें तो हम सेवा नहीं कर सकते। आप देखिए एक आदमी का नाम आता है कैशियस क्ले, मोहम्मद अली, वो बहुत पावरफुल व्यक्ति थे, उनका बार बार प्रभुपाद बताते हैं कि इतने पावरफुल थे कि एक घूंसा मारते थे तो सामने वाला जो है नॉकआउट हो जाता था। और आज की स्थिति ऐसी है कि उनकी बॉडी पैरालाइज्ड है ना, और वो एक चाय का कप भी नहीं उठा सकते। तो सोचिए अगर कृष्ण नहीं चाहेंगे तो वो ताकत भी नहीं रहती। कोई व्यक्ति सोचे मेरी ताकत, मेरा ये, मेरी सेवा, मेरी नॉलेज, मेरा ज्ञान, ये गुरु की सेवा करने से दिव्य ज्ञान प्रकाशित होगा हृदय में, अन्यथा कभी भी कितने भी शास्त्रों का अध्ययन करेंगे कभी प्रकाशित नहीं होगा।
तो जैसे बताते हैं कि एक अंधेरा कमरा है, उस अंधेरे कमरे के अंदर बहुत सारे कांच के ग्लास रखे हुए हैं, है ना, और आपको बोला गया जाइए और कृष्ण भावना भवित जिस पे लिखा वो ले आइए। तो जाएगा व्यक्ति तो अंधेरा कमरा है, उसे दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये नेत्रहीन है, हम लोग तो भगवान से जुड़े नहीं है और ये भौतिक नेत्र जो है जिन पे हमें गर्व है ये तो जब तक सूरज ना हो लाइट ना हो तो देख ही नहीं सकते अंधेरे कमरे में। तो जाएंगे तो चार पांच गिलास तो फोड़ देंगे और उसके बाद एक गिलास जो उठाएंगे वो भी गलत उठाकर लाएंगे। तो क्या जरूरत है, ऐसी क्या चीज होनी चाहिए कमरे के अंदर जिससे हम सही गिलास को उठा सके, क्या होना चाहिए? रोशनी। तो रोशनी क्या है? साधु गुरु शास्त्र के द्वारा बताया गया रास्ता ही रोशनी है। जब रोशनी होगी तो हम सीधे डायरेक्शन में जाएंगे और वही कृष्ण भावना भवित का सही गिलास उठाएंगे। हाँ, ज्ञान ही रोशनी है, बिल्कुल। तो ये जो ज्ञान कैसे आएगा? सेवा करने से, भगवान के नामों का जप करने से। कौन से नामों का जप? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये ज्ञान जो हरे कृष्ण महामंत्र है, भगवान से जुड़ने का ज्ञान धृतराष्ट्र के पास ना होने के कारण ही धृतराष्ट्र ने कौन सा युद्ध कराया सभी जानते हैं, महाभारत। भारत का महान युद्ध महाभारत, 18 दिन तक चलने वाला ये युद्ध, इसमें 18 अक्षनी सेनाओं ने युद्ध किया। 11 अक्षनी सेनाएं जो थी वो पांडवों कौरवों के साथ ही, कौरव मतलब कुरुवंशी है, लेकिन जब हम डिफरेंस कर रहे हैं भेद कर रहे हैं तो जो कौरव थे उनके पास 11 अक्षनी सेना थी और जो पांडव थे उनके पास 7 अक्षनी सेना थी। तो एक अक्षनी सेना के अंदर जानते हैं कि कितने लोग होते हैं, बताया गया है एक अक्षनी सेना में 21,870 रथ होते हैं। कितने? 21,870 रथ, है ना, और 21,870 हाथी, बड़े बड़े हाथी होते हैं ना, 21,870 हाथी और 65,610 घोड़े एक अक्षनी सेना के अंदर ये है, और 1,00,000 पैदल सैनिक, 1,00,000 से भी ज्यादा होते हैं, 1,00,000 पैदल सैनिक। जब ये सारे मिलते हैं तब एक अक्षनी बनती है। आप सोचिए ऐसी 18 अक्षनी सेना है सिर्फ एक धृतराष्ट्र के कारण, क्योंकि वो कृष्ण भावना भवित नहीं है और वो कृष्ण को नहीं समझ पा रहा है, एक मानव समाज नहीं समझ पा रहा है कि एक सामान्य मनुष्य नहीं ये कौन है। रूपात बता रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये चीज वो समझ नहीं पा रहा, इसके कारण उसने 18 अक्षुणी सेना है इतने सारे लोगों को मरवाया। और बाद में युधिष्ठिर महाराज से जब पूछा गया ना, लीडर से पूछा जाता है जो फाइट जीतते हैं कि कितने नॉकआउट हुए, कितने रन बनाए, कितना क्या किया, तो युधिष्ठिर महाराज से जब पूछा गया कितने लोग मरे इस युद्ध में 18 दिन के, तो उन्होंने बताया कि इस युद्ध के अंदर जो मरे हैं 1,66,20,000, ये तो लोग मरे हैं, 1,66,20,000 लोग मर गए। आप सोचिए एक व्यक्ति के कृष्ण भावना भवित न होने के कारण इतनी बड़ी जनता, इतने सारे लोग जो है वो मारे गए। आप सोचिए कि आज हमारे जो नेता हैं या फिर हम भी जिस जगह कार्य करते हैं, हम भी किसी ना किसी जगह के नेता हैं, अगर हम जो है कृष्ण भावना भवित नेत्र नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हम भी ऐसा ही कार्य करेंगे। 18 अक्षणी सेनाओं को नहीं मरवाएंगे लेकिन 15-20 को झगड़ा तो करवाई देंगे। इवन मंदिर में आने के बाद भी, सेवा करने के बाद भी, व्यक्ति का अगर कृष्ण चेतना प्राप्त नहीं है तो वो हर एक चीज को जो है अपनी बॉडी से रिलेट करेगा, है ना, बोलते प्रभुपाद बॉडी कॉन्शियसनेस, है ना, आत्मबुद्धि नहीं होगी उसकी, कौन सी होगी, देह आत्मबुद्धि, देह को ही वो आत्मा समझेगा और फिर क्या करेगा, भक्तों में भी लड़ाइयां कराएगा। भक्त होने के बाद भी हम आपस में कलह करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर हम कृष्ण चेतना प्राप्त नहीं है जिसके कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ। अगर धृतराष्ट्र कृष्ण को समझ जाते कि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, इनकी वाणी सत्य है, मैं इसे मान लूंगा, तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता, लेकिन उन्होंने नहीं माना, इसके कारण ये युद्ध हो रहा है। तो जीवन में जो है कृष्ण भावना भवित होना अत्यंत आवश्यक है। तो अभी व्यक्ति पूछ सकता है कि भगवान उस समय थे, अभी तो भगवान नहीं है, तो हम कृष्ण भावना भवित कैसे हों? तो भगवान बोलते हैं कि कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। आपको अपनी सेना में किसको ले लेना चाहिए? कृष्ण को। पांडवों की सेना में सिर्फ 5 पांडव थे जो कि धनुर्धर थे, ताकतवर थे, बाकी उनकी सेना 17 अक्षनी में सिर्फ हाथी घोड़े थे, चल लड़ने वाले लोग बहुत कम थे, पैदल सैनिक थे, लेकिन 5 जो थे वीर थे ये 5 ही थे, और साथ में एक वीर थे और कौन कौन कौन, कृष्णा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं। तो आप चाहते हैं कि भगवान आपकी सेना में आए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? भगवान के नामों का जप करना चाहिए। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में नाम के रूप में कृष्ण का अवतार होता है। बताते हैं एक श्लोक भागवतम के 12वें स्कंद में, क्रतो यतो धायतो विष्णु त्रेतायाम यज्ञतो मुखाम द्वापर परिचारिगम करो तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में वही हर आपको कीर्तन से मिलेगा, जैसे सतयुग में बताया गया है, क्रतो यतो ध्यायतो विष्णु। उस समय में कल जो सतयुग था, भगवान का ध्यान करने से भगवान आपको मिल जाते थे। एक व्यक्ति की आयु 100,000 वर्ष होती थी, लेकिन 100,000 वर्ष में से उसको 100 वर्ष तक नासिका के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करके कुशा घास की गद्दी बना के बैठना था। आप बैठ सकते हैं? 100 वर्ष का तो समय भी नहीं है। तो फिर कैसे हम ध्यान कर सकते हैं? जितने भी मेडिटेशन सेंटर चल रहे हैं, दिस इज ऑल चीटिंग, ये सब चीटिंग है। क्योंकि ध्यान किससे करेंगे? बोले शून्य पे ध्यान करेंगे। लेकिन प्रभुपाद कैसे हैं? शून्यवादी पाश्चात्य देश तारण है, जो शून्यवादी हैं, इन सारे निराकारवादी, इनको तारण करने के लिए प्रभुपाद ने ये फिलॉसफी दी कि क्या होना चाहिए? कृष्ण भावना भवित होना चाहिए व्यक्ति को, है ना। आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। फिर आया त्रेता युग, जिसमें रामचंद्र जी का प्राकट्य होता है। उस युग में क्या था, एक व्यक्ति की आयु 10,000 वर्ष होती थी। उन 10,000 वर्षों में उसे यज्ञ कुंड में यज्ञ करने होते थे। देखिए, लकड़ी है प्योर थी, आग थी प्योर थी, है ना, घी था प्योर था। लेकिन आज जो है ना, घी प्योर है ना लकड़ी प्योर है। वृक्ष काटेंगे तो सरकार पकड़ लेगी, बोले इतने पेड़ कट गए, आप और काट रहे हो, हमें तो लगाना चाहिए, आप काट रहे हो, तो ऐसे करके सरकार कटवा देती है। और फिर आज घी भी प्योर नहीं है, आप लेने जाओ तो बोलते हैं ये गाय का घी है, उसमें पीला कलर मिक्स करके बोलते हैं ये गाय का घी, काओ काओ प्रोडक्ट, काओ प्रोडक्ट। लेकिन वो काओ प्रोडक्ट नहीं है, वो है बफेलो प्रोडक्ट, और उसमें ना कलर डाल के येलो कलर बोलते हैं काओ प्रोडक्ट। तो ऐसे करके चीटिंग चल रही है। भगवत गीता में बोलते हैं ना, चीटिंग प्रोपेंसिटी, हमारे जो है छलने की आदत कभी जाती नहीं है। समाज को छलते हैं, रिश्तेदारों को छलते हैं, अपने आप को छलते हैं, और फिर बाद में भगवान को भी छलने लग जाते, है ना। इसी के कारण हमारे जितने भी कष्ट हैं, इसी कारण से हैं कि हम जो है सच्चाई का रास्ता नहीं अपनाते। सच्चाई का रास्ता क्या है? भगवान के बताए गए शास्त्रों के अनुसार चलना, है ना। फिर आता है जो द्वापर युग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण आते हैं। उसके अंदर था कि अपने जो गहने थे, सोना था, द्रव्य थे, वो भगवान को अर्पित करो। आज देखते हैं पद्मनाभ मंदिर जो है कहां पर, साउथ इंडिया में, उसका जब खजाना खुला तो उसमें कितना असंख्य सोना प्राप्त हुआ। इसका मतलब उस समय में लोग क्या करते थे, द्वापर युग में अपना जो सोना था, अपने द्रव्य थे, वो भगवान को अर्पित करते थे। लेकिन आज के समय में बोला जाए द्रव्य अर्पित करिए, बोले प्रभु जी पहनने के लिए नहीं है, अर्पित कहां से करेंगे, है ना। चेन स्नैचिंग हो जाती है, रोड पे लोग लूट लेते हैं, इस प्रकार का माहौल है। तो क्या करें? तो बताया है कि अगर आपको भगवान को पाना है, कलो तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में हरि का कीर्तन करिए। कौन सा कीर्तन? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, या हईते सर्व सिद्धि हईबे तुम्हार, सिर्फ इसी हरे कृष्ण महामंत्र को करने से तुम्हें सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, और किसी सिद्धि की जरूरत नहीं है, है ना। हम सोचेंगे ओ हरे कृष्ण महामंत्र तो ठीक है, चलो भगवान की भक्ति करने के लिए है, लेकिन जीवन में भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए कोई और मंत्र, ओम सोम शुक्राय शनिय नमः, वो करने पड़ेंगे, शायद वो सिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अगर आपके जीवन में कोई भी अभिलाषा है, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, अन्य अभिलाषिता शून्य हो, लेकिन अगर फिर भी है, तो क्या यह हईते सर्व सिद्धि हई में तुम्हार, खाली हरे कृष्ण महामंत्र करने से आपको इस जीवन की पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो लोग मंत्र के ऊपर सोचते हैं कि मंत्र तो है क्या है, खाली ऐसे ही है, लेकिन मंत्र का असली अर्थ आप समझे तो होता है मन त्रायते इति मंत्र, जो आपके मन को इस भौतिक जगत से निकाल कर वापिस कृष्ण चरणों में लगा सकता है, वो है मंत्र। श्रील प्रभुपाद एक बहुत अच्छी स्टोरी बताते हैं इसके ऊपर, कि एक बार लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर बोस हुआ करते थे, तो जो डॉक्टर घोष थे वो साइंटिस्ट थे, और लखनऊ यूनिवर्सिटी में वो मेडिकल पढ़ते थे। मेडिकल स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो थोड़े शरारती होते हैं, तो मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते उन्होंने, उनको पता चला कि उनके जो कैंपस एरिया है उसके आसपास बड़े सारे सांप आ गए हैं। तो उन्होंने कहा किसी एक सांपेरे को बुलाते हैं जो सांपों को पकड़ सकता है। तो सपेरे को बुलाया गया। अब सारे देखना चाहते थे ये सपेरा पकड़ता कैसे है, तो है ना सारी जगह हड़बड़ी मच गई, सपेरा आ गया। सपेरे ने बीन बजाना शुरू किया। जब बीन बजा रहा था तो प्रभुपाद बता रहे हैं, डॉक्टर घोष ने पूछा कि भैया कैसे पकड़ोगे आप ये सांपों को? कह रहे मंत्रों के द्वारा। कह रहे मंत्रों के द्वारा? अरे ये तुम्हारे सांप नहीं है टोकरी वाले, बिना जहर के, ये सांप जो है वो डस लेते हैं, बड़े खतरनाक है, 2-3 लोगों को काट चुके हैं, मंत्र से कुछ नहीं होगा। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पास भी जो ये सांप हैं ये भी सारे विषैले हैं। तो उन्होंने टोकरी खोली तो इतने में सारे सांप निकल के बाहर आ गए, 10-12 सांप थे, तो पूरे फ्लोर में घूमने लग गए। अब सारे के सारे वाह वाह बचाओ बचाओ करके ना प्रभुपाद बता रहे हैं, वो ऊपर चढ़ गए सारे, कोई इधर चढ़ गया ऊपर चढ़ गया, बोले अरे सांपों को पकड़ो पकड़ो जल्दी पकड़ो। उसने कुछ मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़ने से क्या हुआ, धीरे धीरे वो सांप एक एक करके वो आ गए। तो उसके बाद 10-12 थे और इस टाइम 16-17 हो गए, मतलब और एक्स्ट्रा सांप जो इधर उधर घूम रहे थे वो भी सारे टोकरी में आ गए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं तो डॉक्टर घोष हैरान हो गए देख के, कह रहे हम तो साइंटिस्ट हैं, हमें नहीं पता था कि मंत्र में इतनी शक्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, और चेतन महाप्रभु कह रहे हैं कि जो ये मंत्र है इसका नाम है महामंत्र, इया हई ते सर्व सिद्धि हई वे तुम्हार। जो महामंत्र है, अगर सपेरा जो सांप वाला वो एक छोटे से मंत्र से सांपों को ग्रहण कर सकता है, तो हमारे जो इंद्रिय रूपी जो इंद्रियां भाग रही हैं, ये जो सांप हैं इनको कंट्रोल करने के लिए क्या महामंत्र काफी नहीं है? महामंत्र से सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन व्यक्ति का विश्वास नहीं होता। और जितनी हमारी श्रद्धा होगी उतने ही अनुरूप में हमको इसका फल प्राप्त होगा। या यथाम ताम प्रपजन्ते ताम तथे भजामि हम, है जो भी मेरी जितनी परसेंटेज में मेरी भजन करेगा उसी के अनुरूप उसको फल प्राप्त होगा। ये नहीं है कि सब चैंटिंग कर रहे हैं और सबको समान रूप से फल प्राप्त होगा। बोले सब भगवान का नाम लेते हैं, एक नाम ले रहे हैं हरिदास ठाकुर है, एक हम ले रहे हैं, एक प्रभुपाद नाम ले रहे हैं और पूरे विश्व में 108 मंदिर बना देते हैं, और हमारे को प्रॉब्लम आती है 100 किताबें डिस्ट्रीब्यूट करने को बोला जाए क्योंकि हमारे मंत्र में शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास नहीं है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथे भजामि हम, जो जितनी परसेंटेज से भजन करेगा उतना ही अनुरूप में उसको फल प्राप्त होगा। अगर आप फल चाहते हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ कि इसके अलावा और जीवन में कुछ भी नहीं है, तब आप भजन करेंगे तब आपको सब कुछ प्राप्त होगा। ये हरि नाम जतो पापी हरे, पापी है तातो पापी करी बारे हरे। ये प्रभुपाद बताते हैं कि चेतन महाप्रभु ने चेतन चेतामृत में लिखा, एक हरि नाम जतो पापी हरे, पापी है ततो पाप करी बारे नरे। ये जो महामंत्र अगर एक बार भी ध्यान पूर्वक विश्वास के साथ लिया जाए तो इतने पापों को खत्म कर सकता है कि जितना एक पापी सोच भी नहीं सकता जीवन में पाप करने का। सोचिए कितनी शक्ति है इस हरि नाम के अंदर। क्या है हमको इतना विश्वास? अगर है तो फिर हमारे जीवन में पाप खत्म क्यों नहीं होते? हमको भगवान के भजन करने में रस क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा विश्वास नहीं है, हम नेत्रहीन हो चुके हैं, है ना। तो एक बहुत अच्छे सेमिनार में बता रहे थे कि हमारे जीवन में अविद्या ने हमको घेर रखा है, अपराधों ने हमको घेर रखा है, आसक्ति ने हमको घेर रखा है, और किसने घेर रखा है हमको? अनर्थों ने हमको घेर रखा है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं अनर्थ का मतलब है जिसका कोई अर्थ नहीं है, बेकार की फालतू चीजों ने हमें घेर रखा है। अनर्थ बोलते ना, अनर्थ भरे हुए हैं, अनर्थ का मतलब ही ये है जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, वो अनर्थ है, फालतू की चीजें। अनर्थ, अविद्या जिसमें कोई ज्ञान नहीं है, अविद्या, आसक्ति इस संसार से, अपराध, इन्होंने हमको घेर रखा है। तो सिर्फ इन सारे ए जो है ना, देखो ए से है ना ये सारी चीजें, ए फॉर अविद्या, ए फॉर अपराध, ए फॉर आसक्ति, और ए फॉर और क्या चीज बताई, चार, अपराध, आसक्ति, अविद्या और अनर्थ, चार ए है। इन चार ए को काटने का एक ए है, सिंपल तरीका क्या? हाँ हाँ, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और उनका बताया हुआ रास्ता, अटेंटिव चैंटिंग, ए फॉर ए, देखिए ए हमारे जीवन में सब कुछ है। ए फॉर एप्पल से शुरू करते हैं और हमारा जीवन ए फॉर अटेंटिव चैंटिंग में जाकर खत्म हो जाता है। तो अगर हम अपने जीवन में अटेंटिव चैंटिंग को लाते हैं, ध्यान पूर्वक जप करना, है ना, वो ये भी एक कला है सीखने के। प्रभुपाद बोलते हैं ये नहीं, ये कोई सिंपल प्रोसीजर नहीं कि हर एक व्यक्ति ने जप कर लिया सबको समान रूप से फल मिलेगा। दिस इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एक्सरसाइज। हो सकता है हम सारी सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ हो जाएं, प्रसाद की सेवा में हमारी तारीफ हो, प्रचार की सेवा में हमारी तारीफ हो, मंदिर निर्माण की सेवा में हमारी तारीफ हो, हम बहुत एक्सपर्ट हो जाएं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना में एक्सपर्ट होना ये सबसे डिफिकल्ट सेवा है। और हम क्या सोचते हैं, सबसे इजी, अरे प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण, यही तो है क्या है? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं इसमें अनलिमिटेड स्कोप है अपने जीवन में कृष्ण को लाने का। सबसे ज्यादा ताकत है इस हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर जो आपके जीवन को बदल सकती है, आपकी अविद्या, आसक्ति, अपराध और अनर्थ, इन सारे को काट सकती है। फोर एज फॉर सिंगल ए एसी भक्ति विदान स्वामी बाय अटेंटिव चैंटिंग योर लाइफ कैन चेंज। लेकिन हमारे साथ ऐसा होता क्यों नहीं है? तो एक बार एक भगवद गीता के एक प्रोफेसर थे, वो ऐसे ही मतलब भक्त तो नहीं थे लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी, कुछ एब्रीविएशन बताया जिसको हम अगर अपने जीवन में लाएं तो हमारा जीवन एकदम बदल सकता है। उन्होंने बोला आई आई एस एस टी सी, क्या बोला, IISCC उन्होंने बोला इसके कारण ही हमारे जीवन में हम जप को समझ नहीं पाए हैं। आय का मतलब द इम्पोर्टेंस ऑफ होली नेम। अपने जीवन में हमें ये समझें कि भारी नाम के हमारे जीवन में क्या मूल्यता है, क्या इम्पोर्टेंस है। जब ये मूल्यवान चीज़ को समझेंगे कि ये चिंतामणि जैसा पत्थर है, इसको छू लो तो सोना बन जाएगा आपका जीवन। तो इम्पोर्टेंस ऑफ चैंटिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ होली नेम जब हम समझेंगे तो फिर आय, दूसरा आय हमारे जीवन में आएगा। कौन सा? इंटरेस्ट। हम ध्यान पूर्वक जप करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है ना इस संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु को मेरे पास हो। तो पहले पता तो हो मूल्यवान है क्या, तभी तो हम प्राप्त करना चाहेंगे। तो आई फॉर जो है इंपॉर्टेंस ऑफ होली नेम, देन आई फॉर इंटरेस्ट फॉर होली नेम, तब आपका इंटरेस्ट फॉर हरि नाम आएगा। और फिर एस मतलब सीरियस और एस मतलब सिंसियर, तब आप ध्यान पूर्वक जप करने के लिए सिंसियर और सीरियस हो पाएंगे। और फिर आता है सीसी, फिर आपका कंसंट्रेशन और कमिटमेंट आएगा कि मुझे इस ध्यान पूर्वक जप को करना है। कमिटमेंट आ जाएगा आपके जीवन में, आप उसको प्रगाढ़ता से अपने जीवन में अपनाएंगे। लेकिन इसके सबसे पहला आय इंपोर्टेंस नहीं समझेंगे तो फिर क्या है, पूरा जीवन ऐसे ही आए हैं और ऐसे ही चले जाएंगे। हमारा जीवन जो है वो पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा, है ना। आप बता जानते हैं जो कृष्ण हैं वो तत्पर हैं कि कब कोई व्यक्ति मेरा नाम ले, कोई मेरा नाम ले तो बस मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा उसके सामने, उसकी जिह्वा पर नृत्य करूंगा, उसका जीवन बदल दूंगा। लेकिन हम इतना सब कुछ जानते हुए भी इंपॉर्टेंस ऑफ होली नेम को एक्सेप्ट नहीं करते। जानते हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया हमने अपने लाइफ में, है ना। जब हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो बताते हैं प्रभुपाद कह रहे हैं दुई लगे होरा होरी, प्रभुपाद बंगाली में बोलते हैं, दोनों की होड़ लगी हुई है, भक्त की और एक भगवान की। भगवान चाहते हैं मैं इसके जीवन में इतना कष्ट दूंगा कि ये हरिनाम भूल जाएगा और फिर ये मांगेगा आप मुझे कष्टों से निवारण कर दो, है ना। लेकिन जो भक्त होता है, सच्चा भक्त हरिदास ठाकुर जैसा, वो क्या करता है, वो कहता है कि मुझे कष्ट नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए हो, मुझे कष्ट नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए हो, है ना। कष्ट दे दो कितने भी, लेकिन तुम मेरे को चाहिए, मुझे कष्ट निवारण के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं पुकारूंगा, मैं सदा पुकारूंगा तुम्हें तुम्हारी प्रसन्नता के लिए। दुई लगे होड़ा होड़े, कृष्ण चाहते हैं कष्ट दूं ताकि ये मुझसे कुछ मांगे, और भक्त कहता है मैं कुछ मांगूंगा नहीं, है ना, निष्काम हो जाऊंगा पूरे जीवन में। इस प्रकार की भक्ति जब हम करेंगे, इस प्रकार का जब दृढ़ निश्चय हो जाएंगे, तब हमारे जीवन में बदलाव आएगा। एक स्टोरी आती है कि रामचंद्र जी जब पुल बना रहे थे, जब पुल बनाया उन्होंने इस पार से लंका जाने के लिए, तो बीच में जो है पुल बन गया था, जब पुल बना तो एक पगडंडी थी ऐसे करके, और उसके जब भगवान ने चलना शुरू किया उसके ऊपर, तो दोनों तरफ से समुद्री जीव बाहर आने लगे। और फिर है ना पीछे जब सेना चल रही थी तो बड़े बड़े वानर थे, उनके चलने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए थी, पुल छोटा था। तो भगवान ने क्या देखा, लोगों ने क्या देखा, उनके साथ सेना ने, कि वो जो एक रास्ता बनाया था वो तीन रास्तों में डिवाइड हो गया, वन लेन हाईवे थ्री लेन में बन गया, क्योंकि समुद्री जीव आ गए भगवान के दर्शन करने के लिए, ऐसे करके ऐसे देख रहे हैं भगवान को रास्ते पे, और बाकी सेना उनके ऊपर पैर रख के जा रही है। तो सब लोग बोले कि भगवान आप में तो इतनी ताकत है, आपका इतना सुंदर स्वरूप है, आपका सुंदर स्वरूप देख के सारे जीव जंतु आ गए, तो आपने इतनी मेहनत क्यों करवाई, इतने बड़े बड़े पत्थर हमसे डलवाए, इतना बड़ा पुल बनवाया, इतने दिन लग गए, हम बस आप खड़े हो जाते, सारे जीव जंतु आपके दर्शन के लिए आते, हम उनके सर पे से निकल जाते, बड़ा आसान था। तो भगवान बोले नहीं, जब तक मैंने ये पट्टी नहीं बनाई, एक पट्टी बनाएगी तब दो पट्टियां, तब दो रास्ते ऐड होंगे। मतलब अपने जीवन में कम से कम एक पट्टी अपने हृदय में बनाने की तैयारी करें, तो फिर क्या होगा, भगवान अपने आप उसके मल्टीपल प्रपोर्शन में आ जाते हैं। लेकिन हम अपने जीवन में एक धारी, एक पट्टी भी भगवान कृष्ण को देना नहीं चाहते। इसमें अविद्या है, आसक्ति है, अनर्थ है, सारी चीज़ें, संसार की सारी चीज़ें हैं, लेकिन कृष्ण के लिए कोई जगह नहीं है, है ना। भगवान का दर्शन करते हैं पूरे दिन में 5 मिनट, और पूरे संसार का करते हैं 23 घंटे और बाकी 55 मिनट, है ना। आप खुद देखिए भगवान की कितनी बड़ी पट्टी हमारे हृदय में है। अगर हम 24 घंटे में से 2 घंटे भगवान को दे दें, एक सुंदर सी अगर पट्टी बनेगी, तो 22 घंटे में क्या होगा, भगवान उसको ऑटोमेटिकली फैला देंगे, पूरे हृदय में हमारे भगवान का ज्ञान प्रकाश होगा। और वो 2 घंटे में हमें क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विदुर इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं, क्योंकि वो कृष्ण भावना भवित को, कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानकर, इंपॉर्टेंस ऑफ होली नेम को जानकर अपने जीवन में लेकर आए हैं, है ना। इसी प्रकार से एक भक्त थे, उनका नाम था शिवानंद सरस्वती, ऋषिकेश में रहते थे, और उनको जयपुर के राजा ने सुना था कि शिवानंद सरस्वती सदा क्या करते हैं, समाधि में लीन रहते हैं, समाधि में लीन रहने के कारण वो चाहते थे कि मैं भी समाधि देखूं। हमारे जीवन में होता है ना, समाधि जैसा शब्द बड़ा ही हमको रोमांचक लगता है, मैं भी देखूंगा समाधि कैसे होती है, समाधि क्या होती है। तो शिवानंद सरस्वती की समाधि देखना चाहते थे, उन्होंने देखा नहीं था, सिर्फ सुना सुना मात्र था। तो जब वो देखने पहुंचे तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, लेटर लिखा और बोला कि मैं देखना चाहता हूं कि आप जब समाधि में हो तो मैं अपनी आंखों से प्रत्यक्ष आपको समाधि में जाते हुए देखना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, 16 फरवरी अगले साल आप आ जाइए, अभी सर्दी का समय है, फरवरी में आप आइए, मैं समाधि में लीन हो जाऊंगा। तो खुश हो गए राजा जयपुर के और अपने सारे सैनिकों के साथ में वहां पहुंच गए। जब वो पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, 16 फरवरी का तारीख थी और शिवानंद सरस्वती अपने जप माला के अंदर उंगली डालकर क्या कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से वो जप कर रहे थे। और फिर एक घंटा गुजर गया तो उनको लगा कि हो सकता है जयपुर के राजा को और उनके सैनिकों को कि शायद शुरुआत कर रहे हैं ना भक्ति करने के, समाधि में जाने से पहले कुछ मंत्र उच्चारण करने होते तो ये मंत्र कर रहे हैं। फिर 2 घंटे निकल गए, फिर 3 घंटे निकल गए, वो इधर से उधर, उनको पता ही नहीं चला कि जयपुर के राजा आ गए, उनके सैनिक आ गए, सारे लोग पूरी कम्युनिटी इकट्ठी हो गई है उनको समाधि में जाता हुआ देखकर। वो जप करते रहे, फिर 4 घंटे निकल गए, 5 घंटे निकल गए, 5 घंटे बाद उनका जब जप समाप्त हुआ तो उन्होंने उंगली बाहर निकाली और आंखें खोली तो देखा कि सारे लोग, अरे आप लोग आ गए, कह रहे हाँ हम तो इंतजार कर रहे हैं आप समाधि में कब जाएंगे। अरे कब जाएंगे, मैं तो 5 घंटे से समाधि में ही था, है ना। तो फिर इसके ऊपर प्रभुपाद बता रहे हैं परपट में कि देखिए हमारे जीवन में ये सबसे बड़ी समाधि है, उस 2 घंटे में हम सब कुछ भूल जाएं, हमारे जीवन में इर्द गिर्द क्या हो रहा है, सिर्फ अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र को ध्यान पूर्वक अपने जीवन में कृष्ण को ले आएंगे तो फिर हमको और किसी कष्ट की जरूरत नहीं है। यही सबसे बड़ी समाधि है और सबसे बड़ा समाधि श्रील प्रभुपाद की है, क्योंकि प्रभुपाद सदा हरे कृष्ण महामंत्र का जो है उन्होंने ताकत उसको समझा और पूरे विश्व में उसको फैलाया। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गॉड प्रेम आनंद। कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं आप लोगों के, आज काफी सारे नए भक्त आए हुए हैं तो प्रश्न है अगर आपका कोई जीवन का आध्यात्मिक तो पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन का मतलब तो 2 होते हैं ना।